कार्तिक मास चल रहा था, 5/11/1966 शनिवार को 7वें पेज के अंत में बात चल रही थी कि संगम युग को 100 वर्ष देना चाहिए, तो ये कचर पट्टी सारी साफ हो जाए। कौन सी कचर पट्टी है? जो संग दोष और अंग दोष में जब से ज्ञान में चल रहे हैं तब से उस कचर पट्टी में ही पड़े हुए हैं। बाबा ने बार बार आगाह किया, क्या हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, तो जब सारी कचर पट्टी चली जावे फिर वो जो बचते हैं कौन बचते हैं? सूर्यवंशी और असल चंद्रवंशी जो बचते हैं, उनमें से भी जो वो हैं वो हैं, किन की तरफ इशारा किया? सूर्यवंशियों में भी, रुद्रमाला के मणकों में भी, ऐसी ऐसी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हैं जिनमें देवान का बहुत मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। और चंद्रवंशियों में भी जो मुखवंशावली हैं वो तो रुद्रमाला के मणके हैं ही, परंतु कोई तो अनेक मुखों वाले हैं। क्योंकि 63 जन्मों में अनेक नीची कुरियों वाले ब्राह्मण सो देवता और देवता सो नीची कुरी वाले धर्म संप्रदायों में जाता के संग का रंग लगाते, अन्न दोष में संग दोष में चले जाते हैं, भूसाप चले जाते हैं। और जो ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले कुखवंशावली है, कुख माने गोद, जिनको गोद का बहुत नशा रहता है, मुख का नशा इतना नहीं रहता है कि ब्रह्मा के मुख से हमने शिव बाबा की वाणी सुनी, जो शिव बाबा अखूट ज्ञान का भंडार है, क्योंकि वही एक आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, ये त्रिकालदर्शी है। वो आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं को निराकारी वर्षा देता है। आत्माएं अविनाशी तो निराकार आत्माओं के बाप का वर्षा भी अविनाशी। कौन सा वर्षा निराकार? ज्ञान का वर्षा देता है। जो ज्ञान सत्य के आदि मध्यंत का ज्ञान, सच्चा ज्ञान 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र में से किसी के पास नहीं। ऐसे शिव बाप के मुख से निकले हुए ज्ञान की ओर जो आत्माएं तवज्जो नहीं देती है, ध्यान ही नहीं देती, लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे ब्रह्मा की गोद में ही मस्त रहते हैं, जिनको कुकवंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। वो कुकवंशावली ब्राह्मण देवानु को छोड़ ही नहीं पाते, पूरे संगम युग में नहीं छोड़ पाते। इसलिए वो कमजोरी रहने के कारण वो आत्माएं सतयुग त्रेता में नीची कुरी के ब्राह्मण सो नीची कुरी के देवता बनते हैं, कम बलों वाले। और द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। अनेक जन्मों का उन धर्मों का, धर्म पिताओं का, धर्म पिताओं के फॉलोअर्स का संग का रंग लेते रहते हैं। वो सब चले जाते हैं पहले ही संगम युग में। तो बताया वो जो बचते हैं कौन? ऊंचे से ऊंचे वंश वाले कौन? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों बचते हैं। उनमें से भी जो वो हैं, कमजोर कमजोर आत्माएं, उनकी भी छटनी होती है, वो साथ चले जाए, क्लियर हो जावे। और फिर उनको कहेंगे नई दुनिया में सब नए। भाई पुराने सब भाग गए, तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि नहीं, सूक्ष्म वतन को 50 वर्ष देवे, सन 36 से लेकर 86-87 तक जब तक दादा ब्रह्मा बाबा के 100 साल की आयु पूरी हो, क्योंकि शास्त्रों ने भी बोला है ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो वो ब्रह्मा जिसकी गोद में सब धर्म वाले खेलते हैं, जैसे बिल्ली की गोद में भारत की राजधानी है ना, भारत माता की राजधानी, जिसके लिए बोला दिल्ली का सुधार तो सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन तो सारी दुनिया का परिवर्तन। वो ब्रह्मा की आत्मा जो किसी माता में प्रवेश करके महाकाली का तामसी पाठ बजाती है, जिससे कलयुगी तामसी दुनिया के अंत में सभी धर्म की आत्माएं ब्रह्मा की औलाद कही जाती है। 500-700 करोड़ तो बोला वो ब्रह्मा जो माता में प्रवेश करके माता के रूप में पूजनीय पाठ बजाता है, उसके लिए 100 वर्ष बताए। परंतु बाप कहते हैं नहीं, सौ वर्ष तो लग ही जाना होगा। अरे उस 100 वर्ष से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि महाकाली सभी असुरों का विनाश कर देती है, सिर्फ असुरों के विनाश से थोड़े ही फायदा होगा। पहले बोलो वो विनाश की बात तो रही एक ओर, वो 10 वर्ष लगे शूटिंग पीरियड में, 36 से लेकर के 42-45 वर्ष के बीच, जबकि दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हीरों की क्षमा हीरो समा सारा ही जल गया। यह है बेहद के हीरों की बात, जिन 10 वर्षों के लिए बोला था कि यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी, तो 10 वर्ष में वो टोटल विनाश हुआ। क्योंकि गॉड इज सत, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, और गॉड एक ही होता है, अनेक व्यापी तो होता नहीं, भगवान तो एक ही व्यापी होता है। तो उन 10 वर्षों में टोटल विनाश हुआ, एक ही बचा जिसके लिए बोला यज्ञ के आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई थी। जिसके लिए फिकरा बोला अलग को अल्लाह मिला, बे को मिली बात सही। कौन अलग कौन बे? उर्दू के अक्षर हैं, अव्वल नंबर अक्षर है अलफ, जो सदा खड़ा रहता है पुरुषार्थ में, नंबर 2 का अक्षर है बे, जो पड़ा रहता है, गिर जाता है। तो जो सारे संगम युग में टोटल आसुरी दुनिया के विनाश के लिए निमित्त बनता है, गाया हुआ है शंकर द्वारा विनाश, वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। संगम युग में जो 10 वर्ष हैं आदि के, उनमें भी उस आत्मा के शरीर को कोई खलास कर सकता है? जो मुरली में बोला क्या लाश भी गुम कर दी, लेकिन आत्मा को कोई खलास नहीं कर सकता। मनबुद्धि रूपी आत्मा में भले सारी दुनिया एक ओर हो जाए और वो एक तरफ हो जाए, फिर भी उसके उमंग उल्लास को कोई भी अंतमते सो गते में नहीं ले जा सकता। तो 10 वर्ष की बात लगाई कि वो 10 वर्ष लगे या दूसरी बार विनाश हुआ ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में, ब्राह्मणों के संगठन का कब हुआ है? 76 में, 66 में नहीं, स्टार्टिंग भी नहीं, 66 में शिव जिस तन में प्रवेश करता है, जिसका नाम ब्रह्मा देता है, उसको खलास तो कोई नहीं कर सकता। अठारह जनवरी की बात है, हार्ट फेल हो गया दादा लेसराज ब्रह्मा का, गीता ज्ञान मुरली में बोला है योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता। फिर भी सूक्ष्म शरीर तो धारण किया, अचानक मौत होने वालों को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, दादा लेसराज ब्रह्मा के सौ साल तो नहीं पूरे हुए, तो बोला है ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है, मृत्युलोक में खलास होगा तो सौ साल पूरे होते हैं, 47 से जब मुरली चलना शुरू हुआ ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा, तो शिव ने प्रवेश किया मुरली चलाने के लिए, नाम रखा दादा लेखराज का, नाम क्या रखा है, ब्रह्मा नाम रखा, और विद्यालय का नाम क्या रखा गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा गया। तो वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दादा लेखराज ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी होने तक विघटन का रूप उतना नहीं लेता, जितना लेना चाहिए था। 100 वर्ष पूरे होते ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नया नाम निकल पड़ता है, मुरली के अनुसार कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटाकर आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय लिख देना चाहिए। तो नया नाम शुरू हो गया और काम तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, सन 36 में ही परम ब्रह्म में शिव ने प्रवेश किया दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन दिया, ज्ञान का बीज डाल दिया। तो वो परम ब्रह्म की आयु 36 में 60 वर्ष और 60 वर्ष में 40 वर्ष जोड़े हैं तो कितना आता है, है? 100 साल पूरे हो जाते हैं 76 में। जिस 76 के लिए 66 की मुरली में घोषणा कर दी थी, पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन विनाश और नए ब्राह्मणों की दुनिया की शुरुआत हो जाएगी, नई दुनिया की शुरुआत, पुरानी दुनिया का विनाश। और ये भी बोला कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो सन 76 आता है। 76 में लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं उर्फ राम सीता वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने लगती हैं, जन्म ले लेती हैं और जिन ब्राह्मणों के लिए मुरली में बोला तुम बच्चों की इस देवान की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट पाप से सीखोगे, तो ये सन 76 से शुरू हो जाता है। एक एक करके दादा लेखराज के द्वारा जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उस ब्राह्मणों की सृष्टि का विघटन होता है और नए एडवांस पार्टी का संगठन शुरू होता है। लेकिन उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बदल करके आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं पड़ता, जैसे सन 36 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं था, था ओम मंडली नाम था। किसकी मंडली? आ ओ मा, आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माने महेश। महाईश माने महेश, तो महाईश कहाई तब जाता है जब ईश अर्थात शासन करके दिखावे। महा माने बड़े थी बड़ा, सारी दुनिया के ऊपर शासन करके दिखावे, विश्व की बादशाही लेकर दिखावे, नहीं तो इस दुनिया की हिस्ट्री में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कैसे कैसे हिम्मत वाले निकले विधर्मियों में से, लेकिन कोई ने भी सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य नहीं किया, कर नहीं पाया, विश्व की बादशाही ले नहीं पाई। तो वो विश्व का बादशाह जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है संगम युग में ही, नर से प्रिंस नहीं बनता। सतयुग के 8 नारायणों की तरह डायरेक्ट नर से नारायण बनता है, वो सारे विश्व पर विश्व की बादशाही प्राप्त करता है। परंतु दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में होता है, बाद में स्थूल में होता है। मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, कारखाना बनाएंगे, पहले सूक्ष्म में मन बुद्धि के अंदर खाका खींचेगा, बाद में उसका छोटा सा मॉडल बनाया जाता है, फिर बाद में स्थूल रूप में मकान दुकान कारखाना बनता है। ऐसे ही ये विश्व की बादशाही का नक्शा जिस आत्मा की मन बुद्धि में पहले ही आता है, वो है नर से नारायण बनने वाली आत्मा, जिसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म सारे ब्राह्मण परिवार ने मनाया था, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, आत्माओं का बाप वो तो शिव है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, उसका शरीर होता ही नहीं, उसके शरीर का नाम होता ही नहीं, और आत्माओं के शरीर का नाम होता है। शिव की आत्मा का नाम, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो शिव के लिए तो गायन है महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि? जिससे बड़ी कोई अज्ञान की रात्रि दुनिया में होती ही नहीं। तो सन 76 को महाशिवरात्रि नहीं कहेंगे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप जो सूर्यवंशी गाया हुआ है राम, उस मनुष्य आत्मा की प्रत्यक्षता हो जाती है ज्ञान के आधार पर। तो कितने वर्ष हुए सन 76 में? संगम युग हुआ 40 वर्ष। तो बोला वो 10 वर्ष लगे कि 40 वर्ष लगे? फिर आगे और बोला कि 50 वर्ष लगे। कब पूरे होते हैं 50 वर्ष? है 86-87 में, जब दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल पूरे एक साल तक गुलजार दादी में प्रवेश ही नहीं कर पाई। वहां उस ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए, मृत्युलोक में ब्रह्मा कलाश हुआ। जैसे सन 76 में परम ब्रह्म वो पुरानी आत्मा तमो प्रधान आत्मा अज्ञान से भरपूर आत्मा, उसका 100 साल पूरा हुआ, मृत्युलोक पूरा हुआ, तो कहां आ गई? है अमरलोक में आएगी। अमरलोक में कैसे? अमरलोक में भी ऐसे आती है कि बेहद का बाप है, बेहद के बच्चे हैं, तो बेहद का जन्म है, बेहद की मृत्यु है। बेहद का जन्म है, बाप के ऊपर निश्चय, बाप को पहचान लिया, जान लिया, बाप का बच्चा बन गया, तो बेहद का जन्म हो गया। और फुदान खास्ता बाद में बाप को भूल गया, अविश्वास आ गया, अनिश्चय बुद्धि बन गया, तो बच्चा मर गया, मृत्यु लोक में चला गया। तो एक आत्मा संक्षेत्र में ब्रह्मा कुमारियों ने भी चित्रों में दिखाई थी। पहले ब्रह्मा कुमारियां सेंटर के दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड लगाती थी, किसी को याद आया है? हाँ, उसमें लिखा होता था श्री कृष्ण आ रहे हैं, बुद्ध रूपी हथेली में स्वर्ग का बड़ा गोला दिखाया था, खाका दिखाई दिया, और लात में नरक की दुनिया का गोला दिखाई दिया। उसे नरक की ब्राह्मणों की दुनिया को लात मार दी। कैसे? आप हुए मर गई दुनिया, कोई लेना देना नहीं। किससे लेना देना? हेवनली गॉड फादर से लेना देना। जो हेवन का रचयिता बाप है उससे लेना देना, इन देहधारी धर्म गुरुओं से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि बाप ने बोल दिया इन देहधारी धर्म गुरुओं को मारो गोली। तो आप मुए मर गई दुनिया, भले मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, लेकिन लक्ष्मी नारायण बड़ेपन का नाम है या बच्चा बुद्धि का नाम है? हैं? बड़ेपन का नाम है। पहले तो बच्चा बुद्धि होगा ना, इंजीनियर भी खाका बनाता है मकान का, ये भी सच्ची रूपी मकान है, तो क्या एक ही बार में खाका तैयार कर लेता है? है कि बार बार बनाता है, बार बार है उसमें संशोधन करता है। तो ऐसे ही जो ब्रह्मा कुमारियों ने ये चित्र बनाया था, श्री कृष्ण आ रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ बनाया, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि श्री कृष्ण आ रहे हैं? वाकई अनुभव किया? अभी तक भी अनुभव किया है? नहीं किया, तो क्या झूठा बोर्ड लगाया था? नहीं, करण करावन हार तो कोई दूसरा है, उसने लगवाया और लगाने वालों ने लगाया। वास्तव में वो चित्र सच्चा साबित हुआ संक्षेत्र से, वो लक्ष्मी नारायण उर्फ संगम युगी राधा कृष्ण की आत्मा प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेती है। जैसे बच्चों की बुद्धि में दुनिया की असलियत धीरे धीरे समझ में आती है, बुद्धि धीरे धीरे परिपक्व बनती है कि एकदम परिपक्व हो जाती है, तो ऐसे ही होता है। संक्षेत्र से जो नई दुनिया का नक्शा आता है वो दिन प्रतिदिन अमेंडमेंट होता जाता है, परिपक्व स्टेज को प्राप्त करता है और 10 साल के अंदर जो शास्त्रों में दिखाया है कि जब नई दुनिया बनी थी तो पहले पहले कौन आया है? कृष्ण दिखाते हैं। सागर में, कौन से सागर में? विषय सागर में, संसार सागर में विषय विकारों के हिलोरे लेने वाले सागर में पीपल के पत्ते की हल्की नवैया के ऊपर, क्या पीपल के पत्ते का मिसाल क्यों दिया? अरे बनियन ट्री के पत्ते का मिसाल क्यों नहीं दिया है? क्या कारण? पीकल का पत्ता हल्का नहीं होता है, उससे तो हल्का नीम का ही पत्ता होता है। पीपल का पत्ता थोड़ा भी हवा का झोंका होगा तो जोर से हिलेगा। ये संगमयुग में भी बेहद का माया का झोंका आता है हर मनुष्य आत्मा के सामने। छोटा ढोका आता है, बड़ा ढोका आता है, लेकिन जो चैतन्य पीपल का पत्ता वाली आत्मा है उसके ऊपर से हवा का हल्का झोंका भी आता है तो वो जोर से हिलने लग पड़ती है। और कोई बार बार हिलेगा तो पत्ता आखिरीन टूटेगा या नहीं टूटेगा? है, टूट जाता है। उस पत्ते का नाम ही है दिल्ली रूपी दिल। लोग गीत गाते हैं, शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। तो वो कौन सा पत्ता है जिसके लिए मुरली में बोला, बाप के साथ लंबे समय तक रहने वाला, बहुत संग का रंग लेने वाला, अनिश्चय बुद्धि की मृत्यु में सो जाता है। बाप को भूल जाते हैं। बताओ कौन सा पत्ता है? है पीपल का पत्ता। अरे वो तो मिसाल दिया, जगदम्बा किसकी अम्बा? जगत की अम्बा। जगत नाम क्यों पड़ा? जागने वालों की अम्बा खास, अर्थात क्षेत्र में जब ज्ञान सूर्य उदय होता है मन राम वाली आत्मा, क्योंकि गीता में ही बोला है मैं भगवान जब आता हूँ तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूँ? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूँ। प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला, तो वो सूर्य वाली आत्मा संक्षेत्र से प्रत्यक्ष होती है। और पहले पहले कौन से शहर में प्रत्यक्षता होती है? पहला पहला संगठन कहां से बनना शुरू होता है? अरे मुरली में ही बोल दिया था, दिल्ली से आवाज निकलेगा। क्या? दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी। वो तो है हर हर बम बम की नगरी। तो वो दिल्ली है जगदम्बा की भूमि, जो महाकाली का पार्ट बजाती है। जिस जगदम्बा की गोद में सारे जगत की आत्माएं, 500-700 करोड़ आत्माएं, उसकी गोद में मनमाने ढंग से खेल खेलती हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ की गोद में खेलता भी है, नाक भी पकड़ता है, आंख में उंगली भी डालता है, कुछ भी करता है, है ही बच्चा बुद्धि। तो जो भी बच्चा बुद्धि दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, या उनके फॉलोअर्स हैं, या उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली देव आत्माएं हैं, वो सब किसके बच्चे हैं? है सब जगदम्बा के बच्चे। जगदम्बा शरीर है और उसके मस्तक पर कौन दिखाया जाता है? चंद्रमा। वो कौन है? हैं? राम बलि। हाँ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। जिस ब्रह्मा की गोद में 9 पुरियों के ब्राह्मण, जो 9 धर्मों से चुने जाते हैं, वो मनमाने रूप से खेल खेलते हैं। जैसे दिल्ली की गोद में 7 धर्मों ने राज्य किया, हिस्ट्री उठा के देख लो, मनमाने ढंग से खून खराबा किया, तो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली दिल्ली कहां से निकलती है? है दिल्ली से निकलती है। दिल्ली से ब्राह्मणों की दुनिया का स्थापना का कार्य शुरू होता है, उन ब्राह्मणों की दुनिया का जो सृष्टि के अंत तक जागने वाली आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके, जिनका नाम पड़ता है एडवांस पार्टी, इस सच्चे रूपी रंगमंच पर पहला वंश सूर्यवंशी आत्मा है। जिनके लिए शिव बाप बोलते हैं ब्रह्मा के तन से। कितनी बड़ी 500-700 करोड़ दुनिया के बीच तुम बच्चे ही हो, तुम बच्चों में भले कोई गुण नहीं है, लेकिन राम भगवान उन्हीं बच्चों को चुनते हैं। किस काम के लिए खास है? रावण संप्रदाय पर विजय पाने के लिए, रावण संप्रदाय को खलास करने के लिए।
बच्चे कहते हैं मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप ही तरह से परवाई।
अरे सब प्रकार के गुण प्योरिटी से आते हैं। दुनिया के सारे काम कौन सा गुण से आते हैं? प्योरिटी से आते हैं। और ये राम की सेना कभी हताश होती है तो बाबा उनको आथत देते हैं मुरली में। बच्चे दुनिया की और धर्मों की आत्माओं ने बाप को, भगवान बाप को नहीं पहचाना, लेकिन तुम बच्चों में कोई गुण हो या न हो, लेकिन बाप कौन सा गुण देखते हैं? है एक ही गुण देखते हैं कि तुम बच्चों ने ही बाप को पहचाना। सारे ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे कुख वंशावली हो चाहे मुख वंशावली हो, जो ब्राह्मण सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र भी बनते हैं, उन सब ब्राह्मणों के बीच में तुम बच्चों को बाप ने चुन लिया। किस लिए चुन लिया है? कि दुनिया ग्लानी करे है? वो नीची कुरियों वाले ब्राह्मण जो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं, वो दुनिया के साथ मिलकर के अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, टीवी चैनल्स में ग्लानी करें, अरे ये तो दुनिया के सबसे जाति विकारी से विकारी है, जो अपने विकारों को छोड़ ही नहीं पाते। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही पतित पावन, पावन बनाने के लिए मैं किनको चुनता हूं? है पावन को चुनता हूं, सन्यासियों को चुनता हूं, किसको चुनता हूं? पतितों को ही चुनता हूं। तो तुम होल डाल क्यों होते हो बच्चे? भले दुनिया कहती है भगवान ने बंदरों की सेना ली, बंदर बुद्धियों की सेना ली, लेकिन बाप कहते हैं मुझे तुम बच्चे ही प्रिय हो और सब धर्मों से जास्ती प्रिय हो। क्यों? और उन्हें नहीं पहचाना और तुमने पहचान लिया, तो ये तुम्हारा बड़े से बड़ा गुण है। तो ऐसे बंदर संप्रदाय बच्चों को बंदर से मंदिर बनाने के लिए बाप आया था। पहले 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 उस निराकार भगवान बाप से कौन से बच्चों को वर्षे की प्राप्ति होती है? बाप से तो वर्षा मिलता है ना, कौन सा वर्षा मिलता है? निराकार बाप से है निराकार वर्षा ही मिलेगा ना। कौन सा वर्षा मिलता है? निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। और धर्म प्रश्न धर्म संप्रदाय वालों को, चाहे वो ब्रह्मा की औलाद हो, चंद्रवंशी हो, इस्लामी बौद्धि के चंद्रवंशी हो, उनको ये ऊंचे से ऊंचा ज्ञान का वर्षा नहीं मिलता जो भगवान का वर्षा है। भगवान क्या है? क्या है? है ज्ञान का अखूट भंडार है। उस भंडार में से कोई सारा का सारा भंडार उठा ले फिर भी पूरा का पूरा भंडार बचता है। ऐसा भोला भंडारी है। तो वो भंडार तुम बच्चों को मिलता है नंबर बार। और तुम बच्चों का जो सूर्यवंशी बच्चे गाये हुए हो उनका ज्ञान सूर्य बाप कौन है? प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य कोई पूछते हैं तुम्हारा कौन सा वंश है तो जिससे वंश की शुरुआत हुई उसे हिस्ट्री को पूछा जाता है। चंद्रवंशी कहेंगे जो चंद्रमा से शुरुआत हुई, सूर्यवंशी कहेंगे तो सूर्य से शुरुआत होती। तो कोई ज्ञान का सूर्य है? प्रैक्टिकल में ज्ञान का सूर्य है परंतु ज्ञान का सूर्य कब प्रत्यक्ष होता है? है कब प्रत्यक्ष होता है? अरे रात के 12 बजे प्रत्यक्ष होता है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे प्रत्यक्ष होता है। रात्रि के 12 बजे प्रत्यक्ष होता है, रात्रि के 12 बजे से ज्ञान दिन की शुरुआत विदेशियों में मानी जाती है या भारत में मानी जाती है? माना विदेशी आत्माएं, विधर्मी आत्माएं वो आत्मलोक से निकली हुई ताजी ताजी आत्माएं, नई उतरी हुई आत्माएं जिनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा सात्विक होती है, तीखी होती है, इसलिए वो बुद्धियोग से बाप को जल्दी पहचान लेते हैं। यही ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में हुआ। दक्षिण भारत को भारत का विदेश बोला गया। तो 86-87 में जिस दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में विदेशियों ने पालना ली वो ब्रह्मा का कार्यकाल पूरा हुआ। और वो ब्रह्मा की आत्मा दादा लेखराज की कि जो संसार सागर है, विषय सागर है, उस विषय सागर में जगदम्बा का पाठ बजाने वाली माता में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करके बड़े आराम से अपने आत्मारूपी पांव के अंगूठों को चूसता रहता है। आपने देखा होगा बच्चे, शिशु बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं ना, कौन सा अंगूठा है? पांव का अंगूठा चूसते हैं, हाथ का अंगूठा चूसते हैं। जो अंगूठा है उसको कहा जाता है कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। कैसे आकार वाली है? अंगुष्ठाकार वाली। जैसे शालिग्राम को दिखाते हैं अंगुष्ठाकार, तो आत्मा रूपी अंगूठे को चूसती है, लेकिन हाथ का अंगूठा नहीं। कौन सा अंगूठा? पांव का अंगूठा। क्योंकि बाप कहते हैं तुम बच्चे उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो, क्या 84 जन्मों की सीढ़ी इस संगम युग में तुम उल्टी चढ़ते हो, 5000 वर्ष में ऊपर से नीचे सीधे उतरते हो 84 जन्मों की सीढ़ियां, और अभी संगम युग में उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो। तो जो सत्य रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण है, वो 86-87 की यादगार शास्त्रों में दिखाई है कि वो कृष्ण वाली आत्मा पीपल के पत्ते की मानिंद जो पाठ बजाने वाली आत्मा है, जगदम्बा रुद्रमाला का लास्ट मणका सबसे कमजोर आत्मा। क्या कहा? कैसी आत्मा? लास्ट मणका, उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। इसलिए पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाया। क्या करते हुए? आत्मा रूपी अंगूठा को चूसते हुए, मेरे आत्मा का मनन चिंतन मंथन वहां से शुरू होता है, संपन्न नहीं होता है, क्या शुरुआत होती है। विषय सागर हिलोरें ले रहा है और पीपल के पत्ते की वो चैतन्य नैया इतनी हल्की फुल्की, फिर भी उसका गायन है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसी नैया के ऊपर वो कृष्ण का नैया भक्ति मार्ग में दिखाया गया। विषय सागर में इतनी हल्की नवैया है तो डूबती उछलती भी तो होगी ना, है कि ज्ञान सागर के जल में ऊपर ही रहेगी, है डूबती भी है, उछलती भी है, लोगों को शंका होती है, ये तो डूब ही जाएगी, डूबी की डूबी, लेकिन वो डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर है कृष्ण जैसी 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा, सत्य युग की पहली आत्मा उस पर विराजमान। जिसका बाप क्या है, है हेवनली गॉड फादर, अंग्रेजों में गाया हुआ है। कैसा फादर? हेवन की रचना करने वाला फादर। तो वो फादर खिवैया है, नैया हमारी पार लगाना, जरा कृपा की बल्ली लगाना, ऐसे गीत गाते हैं। नैया है नवैया, बिठैया है कृष्ण का नैया, और खिवैया है शिव बाप, बिंदी बाप, वो ज्ञान की बल्ली पकड़ता है, है? नहीं, शिव बाप शरीर रूपी नैया को खिवैया नहीं कहा जाता। जो विषय सागर से शरीर रूपी नैया को खे करके विषय सागर से पार कहां पहुंचा दे, है? स्वर्ग में पहुंचा दे, जीवन मुक्ति में पहुंचा दे, जीवन मुक्ति कौन दे सकता है? जिसका जीवन होगा वो जीवन दे सकता है, या जिसका अपना जीवन ही नहीं 5000 वर्ष के ड्रामा में, वो जीवन दे सकता है? स्वर्ग का वर्षा कौन दे सकता है? धनवान बाप धन का वर्षा देगा? मल्टी मिलियनर बाप मल्टी मिलियन का वर्षा देगा? मेहलवानियों अटारियों का बाप मेहलवानियों अटारियों का वर्षा देगा? बाप सच्चे रूपी मकान बनाने वाला है ना? नहीं है? सच्ची साकार है या निराकार है? सच्ची साकार है तो रचयिता भी साकार है। निराकार कैसे रचेगा साकार सच्ची को? इसलिए वो निराकार साकार में प्रवेश करता है। निराकार निराकारी घर में ले जाता है। क्या कहा? निराकार बाप का घर कैसा होगा? निराकारी घर, निराकारी आत्माओं को ले जाता है। और मनुष्य सृष्टि है साकार, मनुष्य सृष्टि का बाप भी साकार, तो साकार बाप साकारी सृष्टि में ले जाता है। कैसे ले जाएगा? है? अरे षष्ठी के अंत तक साकार रहेगा, नई षष्ठी तक साकार रहेगा, तब ही तो ले जाएगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो तामसी बन जाती हैं और नंबरवार तामसी बनती हैं, एक को छोड़ करके जो मनुष्य शक्ति का बाप है उसको छोड़ करके एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो शिव समान बन सके, क्योंकि शिव बाप का विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं, तो सबको आप समान बनाता है 100% या एक ही है जो 100% बाप शिव समान बनता है? है एक ही है वो आत्माओं का बाप, आप समान बनाने की युक्ति देता है, बनाता करता नहीं है। वो स्वर्ग नहीं बनाता है, वो निराकारी बाप निराकार बनाता है, निराकारी स्टेज धारण करना सिखाता है। बोलता है बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करो, एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी। ऐसी प्रैक्टिस जब करेंगे तो तुम नर से नारायण विश्व के बादशाह बन जाएंगे। तो जो नर से नारायण बनता है, जिसका नाम ही है नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने धन, कहाँ रहता है? है सदा ज्ञान जल में रहता है। संगम युग में तो जब से नारायण का जन्म होता है तब से ही ज्ञान जल में रहता है, और संगम युग के अंत तक भी ज्ञान जल में ही रहता है। संगम युग है शूटिंग पीरियड 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा का शूटिंग पीरियड कहो, रिकॉर्डिंग पीरियड कहो, रिहर्सल का पीरियड कहो। तो जैसी रिकॉर्डिंग शूटिंग होगी वैसा ही तो ब्रॉड ड्रामे में पार्ट बजाएगा ना, नहीं है? वैसा ही बजाएगा। तो यहां जन्म से लेकर के और अविनाशी जन्म लेकर के क्योंकि वो एक ही सत्य है मनुष्य शक्ति में, जिस सत्य का कभी विनाश नहीं होता। ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सते। जो सत्य है उसका इस सृष्टि में कभी विनाश नहीं हो सकता, जो झूठ है वो विनाश होता है, झूठ भागता है। जैसे झूठे झूठे धर्मों के विदेशी आतताई भारत में आए, बल्कि सारी दुनिया से विजय प्राप्त करते हुए आए, लेकिन भारत में आकर के मुंह की खा के गए। हार कर भाग गए। तो सत्य भागता है या अटल रहता है, और झूठ झूठ भाग खड़ा होता है। तो जो एक ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसका कभी मृत्यु नहीं होती और उसका साकार रूप में कभी जन्म भी नहीं होता। माता के गर्भ से वो अजर अमर अविनाशी है, अमरनाथ गाया हुआ है। किसका नाथ? अमर माने जो मरते ही नहीं, माने देवात्मा। वो देवताएं जिनका मुखिया बाप अमरनाथ है, जिसकी यादगार मंदिर अमरनाथ बना हुआ है, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। क्या पहाड़ पर बैठ करके पुरुषार्थ करता है? पहाड़ माने है ऊंचे से ऊंची निराकारी स्टेज में पहुंच जाता है। जिस निराकारी स्टेज की यादगार है शिवलिंग, परंतु शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो अमरनाथ में जो शिवलिंग है, या दुनिया में भी जहां कहीं शिव के मंदिरों में शिवलिंग है, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? क्योंकि शिव तो कहता है कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? ऐसी कोई साकार मनुष्य आत्मा है जो निराकार बाप की बताई हुई ज्ञान की युक्ति के द्वारा अपन को आत्मा समझ निराकारी स्टेज को धारण करती है। जब संपन्न निराकार बन जाता है तब उसकी यादगार बनती है साकारी लिंग, सौ निराकारी ज्योति बिंदु, जो सोमनाथ मंदिर में बिंदु हीरे के रूप में दिखाया गया था। लेकिन हीरा तो पत्थर होता है, नहीं होता? तो शिव की उपमा पत्थर बुद्धि से देंगे क्या? शिव पत्थर बुद्धि है जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया गया है। तो कौन है वो हीरो हीरा है? हाँ, सच रूपी रंगमंच पर ऐसा कोई मनुष्य है, मनुष्य आत्मा है जो हीरे की तरह हिस्ट्री में आज से लेकर अंत तक ज्ञान की चमक मारती रहती है। कभी वाचा के रूप में, कभी दृष्टि के फोर्स से, कभी इंद्रियों के कर्म से, प्रैक्टिकल में सृष्टि में पावर लेती हुई देती हुई दिखाई जाती है। जिसने अकूत ज्ञान भंडार शिव से संपूर्ण ज्ञान भंडार को उठाया, वो संस्कार उस आत्मा में 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसलिए हीरो पार्टधारी कहा जाता है। हीरो पार्टधारी चाहे पहला सीन हो ड्रामा का, दूसरा सीन हो, तीसरा सीन हो, चौथा कलयुगी सीन हो, चारों युगों में हीरो का पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा, हीरो पार्टधारी है। सतयुग त्रेता में आदि में 16 कला संपूर्ण से भी ऊंचा, जो कृष्ण का बाप है, कृष्ण का भी रचयिता है, उस कलातीत का पार्ट बजाती है, जो शास्त्र में गायन है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, अब जब कृष्ण को जन्म देती है तो बच्चे के साथ 16 कला संपूर्ण तो है ही। कृष्ण बच्चा जैसी आत्मा पहला पत्ता, वो भी कलाओं से क्षीण होने लगती है, तो जो भी पत्ते हैं वो सब पहले जन्म के आदि से ही लेकर के नीचे गिरते हैं, क्योंकि इंद्रियों का सुख भोगते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय है आंख, जो लक्ष्मीनारायण के चित्र में साक्षात्कार से दिखाया है। भगवान बाप शिव ने कि लक्ष्मीनारायण के नीचे जो उनके बच्चे खड़े हैं राधा कृष्ण, वो कौन सी इंद्रिय का सुख ले रहे हैं? आंखों का सुख ले रहे हैं, वो भी तमो प्रधान सुख ले रहे हैं, विविचारी सुख ले रहे हैं या अविविचारी सुख ले रहे हैं? भले अविविचारी सुख ले रहे हैं, फिर भी उनकी कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं सुख भोगने से? तो पहला पत्ता ही जब नीचे गिरता है तो सशस्त्र रूपी रंगमंच पर जो भी 500 करोड़ पत्ते हैं, मनुष्य सृष्टि के बीज को छोड़ करके सभी नीचे गिरते जाते हैं। और तेजी से नीचे गिरते हैं। नंबर 12, कोई आत्माएं धीरे धीरे नीचे गिरती हैं, कोई आत्माएं तीव्रता से नीचे गिरती हैं। जैसे अब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है तमोप्रधान में प्रवेश करता है या पावरफुल आत्मा में प्रवेश करता है, कमजोर में प्रवेश करता है या पावरफुल में प्रवेश करता है, उस समय द्वापर के आदमी सृष्टि में जो सबसे कमजोर आत्मा होती है उसको पकड़ता है। जैसे शिव बाप आत्मा का बाप आत्मलोक से आता है तो किसको पकड़ता है? जो ऊंचे से ऊंचे बड़े बड़े से बड़े आदमी का बच्चा होता है अगर कुसंग में आएगा तो वो बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा नीचे गिरेगा या छोटे आदमियों के बच्चे ज्यादा नीचे गिरेंगे? तो वो बड़ा तो बड़ा बाप जो है धर्म पिताओं मनुष्यों का बाप, सारी मनुष्य शक्ति का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप और उसका भी बाप शिव, जिसका कोई बाप नहीं, वो ऊंचे से ऊंची आत्मा है। उसका जो बच्चा है कौन है? है जिसको परम ब्रह्म कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै नमः, दूसरों को नहीं नमः। तो ऊंचे से ऊंचे बाप का बच्चा द्वापर युग से जब विधर्मी देवान वाले धर्म पिताओं के संग के रंग में आता है तो सबसे नीचे गिरता है। तो ऊंचे से ऊंचे बाप ने ये परंपरा इस सच्ची पर शुरू कर दी। क्या क्या परंपरा शुरू कर दी? आज भी वो परंपरा चली आ रही है। षष्ठी निर्माण के लिए, परिवार बनाने के लिए जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़का ऊंचे कुल का होता है और लड़की नीच कुल की चुनी जाती थी, कमजोर कुल की चुनी जाती थी। यही परंपराएं धर्म पिताएं निभाते चले आए, वो भी धर्म पिताएं हैं अपने अपने धर्म के। उन्होंने भी इस सृष्टि में जो कमजोर आत्मा होती थी उसको चुना, परमधाम से नीचे आती सृष्टि। तो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त, आधार माने जड़, वो जड़ है। द्वापर के आदमी बहुत कमजोर हो जाती है। उसका बाप भी कोई होगा या नहीं होगा? है, क्योंकि पुराने जमाने में तो बाप भी जिंदा रहता था, बाप का बाप बाबा भी जिंदा रहता था, पर बाबा भी जिंदा रहता था, ऐसे होता था ना, लंबी आयु होती थी। तो बच्चा कमजोर होता है और बाप के हाथ में तो सत्ता होती है। जैसे महात्मा बुद्ध को देश निकाला दे दिया, बच्चा कन्वर्ट हो गया, बाप कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है उसको तो इब्राहिम की आत्मा ने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया। जैसे कोई लड़का लड़की को भगा ले जाता है, उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है, तन मन धन को कंट्रोल कर लेता है, तो इब्राहिम की आत्मा जिसमें प्रवेश करती है उसको कंट्रोल कर लेती है। क्राइस्ट ने जीसस को पूरा कंट्रोल कर लिया, परंतु उसके बाप को तो कंट्रोल नहीं कर लिया। वो बाप और उसका बाबा उन देह अभिमानियों को भारत से खदेड़ देते हैं अरब देश की ओर, और अरब खंड में जाकर के वो अपना इस्लाम धर्म अपन पाते हैं। तो बताया कि बड़े आदमी का बच्चा जितना बड़ा आदमी होगा कुसंग में आने पर है वो बच्चा ज्यादा कुसंग में चला जाता है, सबसे जाती कुसंग में बो जाएगा। ऐसे ही राम वाली आत्मा बड़ा तो बड़ा जो आत्माओं का बाप है सर्वशक्तिवान कहा जाता है, जो सर्वशक्तिवान बाप कहता है ब्रह्मा के मुख से, अच्छे मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ लेकिन तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर का मतलब
शरीर के द्वारा व्यक्तिगत कर्मों में भी सर्वशक्तिमान,
मेरा तो अपना शरीर ही नहीं है। तो बताया ये जब 50 वर्ष पूरे होते हैं संगम के तो वो पीपल के पत्ते की नैया को खेने वाला खिवैया इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सबसे पावरफुल सच्ची के याद में, और जो उसका बच्चा है कृष्ण वो गर्भ महल में दिखाया गया, क्योंकि बड़े आराम से आत्मा रूपी अंगूठा चूस रहा है। सागर में पड़े रहने पर भी उसको कोई दुख दर्द महसूस नहीं होता, मतलब कि वो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा क्या अनुभव करती है, विषय सागर अनुभव करती है या क्षीर सागर अनुभव करती है, है? क्षीर सागर में अपन को अनुभव करती है। दुख दर्द का अनुभव वो अमर लोक का अनुभव करती है। नरक में ब्रह्मा खलास होता है और स्वर्ग की नई दुनिया में आ जाता है। तो बताया कि 40 वर्ष पहली बार ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची और पसंद नहीं आई तो यज्ञ के आज के 10 वर्ष की बात है। दूसरी बार सृष्टि रची कब, 47 में जो ओम मजली से नाम बदलकर ब्राह्मणों के संगठन की दुनिया का नाम क्या पड़ा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम पड़ गया बाद में। 76 तक वो सृष्टि का भी खलास और नई सृष्टि की शुरुआत, पुराने ब्राह्मण संगठन का पराभव विघटन और नई ब्राह्मणों की दुनिया की शुरुआत हो जाती है। तो ये तीसरी बार नई दुनिया रची गई और पुरानी दुनिया का विघटन हुआ, विनाश होना शुरू हो गया। फिर बोला वो विनाश की बात 10 वर्ष लगे कि 40 वर्ष लगे कि 50 वर्ष लगे, कौन से सन में 50 वर्ष है, 86-87 कि 100 वर्ष लगे, क्या कितने वर्ष लगे, 3 बार बताया, 10 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष। फिर मुरली में बोला भगवत गीता ज्ञान की मुरली, क्या बोला, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते, तो कब से तुम बच्चों की शुरुआत कब से हुई, तुम जो रुद्रमाला के बनके हो वो रुद्रमाला की आत्माएं मनुष्य आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कब से प्रत्यक्ष होती है? अरे ये रुद्र ज्ञान ही है कब से रचा गया? नहीं, यज्ञ के आदि से ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया। उसी समय ज्ञान यज्ञ का बीज पड़ गया, परंतु वो बीज का आरंभ ज्ञान का बीज के डालने की शुरुआत बाप के द्वारा हुई। मनुष्य शक्ति का बाप जो जगत पिता कहा जाता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, शंकर को जगत पिता जगन्नाथ कहा जाता है, सारे जगत का नाथ आखिरी बनता है, तो उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कब से हुई है? 1936 से। परंतु बच्चे प्रत्यक्ष नहीं हुए, जैसे गर्भ में बच्चा बच्ची आती है तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, लेती है नहीं लेती? जब बच्चा बाहर आता है तो कहा जाता है प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। तो ऐसे ही सन 36 को रुद्र बाप के लिए गर्भ कहेंगे ज्ञान का, और 76 में जन्म कहेंगे। बाप भी जन्म लेते हैं 76 से, बच्चे भी जन्म लेते हैं रुद्रमाला के मण के। उनके लिए बोला, तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष, कम से कम जो अव्वल नंबर बच्चा है शिव बाप का, अव्वल नंबर रुद्राक्ष एक मुख वाला एक ही बात करता है, दुमुहा नहीं है। उन बातों को कोई न समझ पाए वो दूसरी बात, आमने सामने आके समझेगा तो जरूर समझेगा, परंतु विपरीत बुद्धि बन जाते हैं, आमने सामने आने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन शास्त्रों में तो गाया हुआ है, सनमुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघ, माने पाप नाश है तब ही। सनमुख होते ही नहीं, अंदर में चुड़दरा भरा रहता है, क्योंकि अंदर में एक और बाहर में दूसरा होते हैं। मुख में राम, बगल में छुरी होती है, कैसे सामने आएंगे? तो बताया ये 40 वर्ष उस आत्मा के जब पूरे होते हैं, 76 से लेकर कब तक है? 2000 नहीं, 76 को संपूर्णता वर्ष नहीं कहा, 77 को संपूर्णता वर्ष कहा। 77 पूरा होने के बाद फिर कहेंगे संपूर्णता वर्ष भी पूरा हुआ, संपूर्णता की स्टेज पूरी हुई। आत्मिक रूप में बौद्धि का आधार पर, इंद्रियों के आधार पर नहीं, क्या माने बुद्धि में जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प ज्ञान युक्त ही चलेंगे, अज्ञान के संकल्प नहीं चल सकते। तो बोला वो विनाश की बात तो ठीक रही, वो 10 वर्ष लगे कि 40 वर्ष लगे कि 50 वर्ष लगे कि 100 वर्ष लगे, बोला उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं है क्या? अरे बच्चों का विनाश से कनेक्शन है, फायदा है कि संपूर्ण राजधानी की स्थापना से फायदा है? है नरक के विनाश से कनेक्शन है बच्चों का बुद्धि का, या स्वर्ग बन जाने से फायदा है? तो जो संपूर्ण स्वर्ग बन रहा है उसके लिए बोलो, वो संपूर्ण स्वर्ग भी तो आगे चल करके देखेंगे ना कि 36 में टोटल विनाश हो जाएगा, तो हथेली पे आम जम जाएगा है? हथेली पे आम का वृक्ष खड़ा किया जा सकता है? टाइम लगेगा ना। तुम पहले तो बोलो समझने वालों से, क्या तुम पहले तो पति से पावन तो बन जाओ। तुम पावन बनेंगे तो पतितों का खलासा होगा, क्या पतितों का बगुला बुद्धियों का खलासा हो जाएगा, क्योंकि हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। तो पहले तुम क्या करो, पतित से पावन तू बन जाओ। कहां तक पावन बन जाओ? संकल्पों तक पावन बन जाओ। कोई भी विकारी संकल्प न चल सके, विकारी संकल्प नहीं चलेगा तो दृष्टि भी विकारी नहीं बनेगी। नहीं तो बाप कहते हैं 10, 20, 50 विकारी दृष्टि की भूलें रोज ही करते होंगे बच्चे। दृष्टि अगर पावन बन जाए तो क्या रह गया पावन बनने के लिए? तो इस धुन में लगे रहो। कौन सी धुन? कि हम वाइब्रेशन से, संकल्पों से, दृष्टि से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से पहले क्या बन जाएं? पावन पवित्र तो बन जाएं। पिछाड़ी तक इस धुन में लगे रहो। पिछाड़ी माने है महामृत्यु के समय तक। सामान्य मृत्यु तो 84 जन्म में होती रही, उसको महामृत्यु नहीं कहेंगे। महामृत्यु कब कहेंगे? जब सारी दुनिया की मृत्यु एक साथ ही हो जाए। उस महामृत्यु के समय तक पिछाड़ी तक भी, और फिर बताया आप मुए मर गई दुनिया, मने अपने देह वाहन से मर गए तो जैसे दुनिया खलास हो गई। जब तक जीना है देह वाहन में तब तक पीना है। तो इसी धुन में लगे रहो जब तक देवान से मरते नहीं है। कर्मातीत अवस्था तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, क्या कर्म से अतीत बने रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म इंद्रियों से कर्म करना छोड़ दो। कर्म इंद्रियां हैं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। आंख है तो फोड़ लेंगे क्या, हमेशा के लिए बंद कर लेंगे क्या? लेकिन कैसी स्टेज बनानी है, देखते हुए न देखने की। कान है तो क्या बंद कर लेंगे है? कान तो रहेंगे लेकिन क्या करना है, सुनते हुए नहीं सुनना। सारी दुनिया गिलानी करे, अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, टीवी चैनल्स में, शहर शहर में गिलानी करे, इंटरनेट में गिलानी करे, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनना। किसकी बातें सुनना? एक बाप से सुनना। ये अंत तक फाइनल पेपर होगा। क्या, कैसा पेपर होगा? फाइनल पेपर होगा। इंद्रियां कच्ची है या पक्की है? इसलिए मुरली बोला एक से सुनना है। क्या, एक से सुनना है माना एक को देखना है। कर्म इंद्रियों से अगर संग करना है तो किससे करना है? एक से करना है। अनेकों से कोई संबंध नहीं। अगर अनेकों से सुनेंगे तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा, ये जो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, 9 दिन की गर्भ महल की भट्टी करने में निश्चय बुद्धि बनते हैं। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। कैसे, क्या हो जाता है उनको? एक से सुनने की धुन में नहीं रहते, भट्टी की बाहर गए, ट्रेन में घुसे, टेम्पो में गए, टेम्पो वाले ड्राइवर ने सुनाना शुरू कर दिया, ट्रेन में जो अज्ञानी है उन्होंने अपनी बात सुनाना शुरू कर दी। अरे भाई कहां तुम चले गए? तो बस अनिश्चय बुद्धि हो जाती। तो कोई की बात नहीं सुननी। कोई बात सुनाता है तो मन बुद्धि के अंदर बाप की सुनाई हुई वाणी चलती रहे, गूंजती रहे। मुरली से टैली करना है, जहां तक बोल लिया ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसको भी बाप की वाणी से टैली करना है। वो भी झूठ बोल सकती है, वो भी हमको झूठी बातें सुनाकर, अफवाह सुना करके नीचे गिरा सकती है। इसलिए एक का संग का रंग करना है इंद्रियों से, अनेकों का नहीं। जो स्वर्ग में होना होगा सो होगा। पहले पावन तो बनो। जो ये स्थापना में विनाश, और उस विनाश के पीछे जो होगा सो तो होता रहेगा, उसकी चिंता तुम मत करो। पहले क्या चिंता करो कि हम मन बुद्धि से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से ऐसा संग का रंग ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का लगाएं, उस ऊंचे ते ऊंचे प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले भगवंत को पहचाने और उससे संग का रंग लगा करके पतित से पावन बन जावे। बाकी जो होता होगा, विनाश और विनाश के आगे क्या होगा उसकी चिंता बाद में कर लेना। हमको है जो पावन बनाने की बात, वो बुद्धि में पहले रहनी चाहिए। बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। क्या कहा है? क्या धुन लगी रहे? बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। 80 साल हो गए अभी बाबा ही नहीं आया है। अरे आया कि नहीं आया? आया, 80 साल से आया, बाबा आया। लो, बाबा किसको कहा जाता है? है तो 47 से पहले ब्रह्मा की आत्मा ने बाबा को पहचाना था है? उसी ने नहीं पहचाना पहले पत्ते ने, तो तुमने कहां से जान लिया 80 साल की शुरुआत में है? और ब्रह्मा की आत्मा सन 86-87 में 100 साल पूरे हो गए, मृत्यु लोक छोड़ करके अमर लोक में चली गई, तब तक भी उसने पहचाना क्या? बाबा को, साकार और निराकार के मेल को पहचाना। तो तुमने कहां से पहचान लिया है? अरे पहचान लिया? अरे और कोई अभी भी कहते हैं हाँ हमने पहचाना? हम छाती ठोक के कहते हैं कि अंत तक हम पहचानते हुए ही रहेंगे। तो फाइनल पेपर माया ने अभी लिया है या नहीं लिया है? तो तैयार रहो। क्या ये 40 वर्ष अब पूरे हुए कि हुए? क्या इस 40 वर्ष के ड्रामा में जो कृष्ण की वाली आत्मा ब्रह्मा है, वो कृष्ण वाली आत्मा का जन्म हुआ था 15 अगस्त जन्माष्टमी को। कब हुआ था? 15 अगस्त को डबल जेल से स्वतंत्र हो गया। क्या था? स्वतंत्र हो गया, जिसकी यादगार में जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं। परंतु वो ब्राह्मण ब्रह्मा, उसका पहला जन्म हुआ या द्विज टाइटल धारण कर लिया? द्वि माने दूसरा, ज माने जन्म। ब्राह्मण का एक जन्म होता है या दो जन्म होते हैं? हैं? कैसे? एक जन्म होता है शरीर का और दूसरा जन्म होता है है मन बुद्धि रूपी आत्मा का जन्म होता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा परिपक्व बन जाए, वो आत्मा 3 ज्ञान सूत्रों को पूरा धारण कर ले। ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, शंकर का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र, और तीनों सूत्रों की अंत में ब्रह्म फांस गांठ भी लग जाए, तीनों सूत्र मिलकर के एक हो जाएं, इसको कहा जाता है यज्ञ उपवी। क्या? ज्ञान यज्ञ, उप माने ऊंची स्टेज, बीत माने बीत गया, माने पूरा ज्ञान आ गया, पक्का ब्राह्मण हो गया। पहले ब्राह्मण यज्ञ पे भी धारण करते थे ना, है? जब तक यज्ञों पर भी धारण न करें उनकी शादी भी विवाह भी नहीं कराया जाता था, क्योंकि परिपक्व ब्राह्मण नहीं बना। यज्ञों पर भी धारण करते थे तो क्या करते थे, है? अरे टट्टी पेशाब गंदा काम करने के लिए जाएंगे तो कान बांध करके जाएंगे, क्या मतलब है? गंदा काम भी करेंगे, समझा? जैसे शिव के मंदिरों में शिवलिंग को दिखाया है, व्यस्त इंद्रियों से काम करते दिखाया है, गंदा काम करते दिखाया है, अच्छा काम करते दिखाया है? अरे बोलो, व्यस्त इंद्रियों से संयोग करते नहीं दिखाया? अरे अरे भ्रष्ट आचरण करते हुए दिखाया है या नहीं दिखाया? दिखाया, लेकिन कान में तीन सूत्रों को बांध लिया, माने कानों को अच्छी तरह बंधन में डाल दिया कि सुनना है तो ईश्वरीय ज्ञान सुनना है, मनन चिंतन मंथन करना है तो ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना है, इसके अलावा सुनने के लिए कान बांध दिए और कुछ नहीं सुनेंगे। चिंतन करना है, वाइब्रेशन चलाना है, संकल्प चलाना है तो भी ईश्वरीय ज्ञान के संकल्प चले, ईश्वरीय ज्ञान का वाइब्रेशन बनाए। ऐसा करेंगे देवान के अज्ञान के संकल्प नहीं चलाएंगे तो कर्म का बंधन लगेगा। कर्म इंद्रियों से, भ्रष्ट कर्म इंद्रिय से भले कर्म करें लेकिन उसका बंधन लगेगा, इसीलिए शिवलिंग की पूजा होती है। तो बोला ऐसे बाबा को जो साकार निराकार का मेल है, बोलो अंदर से धुन लगाओ, लगाते भी हैं क्योंकि मुरली में ही बोल दिया, जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन को बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते ही नहीं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी नहीं। तो बोला बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, 80 साल के बाद गुहार लगाएंगे, हा? अरे 80 साल की बात तो निराकार के लिए है जो गुप्त पार्ट बजाता है, वो तो शशि रूपी रंगमंच का फाइनल वो डायरेक्टर है। ड्रामा में डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या रंगमंच पर आता है, तो वो तो डायरेक्टर है। बात तो हमारे बुलाने की है, हम जिसको बुलाते हैं वो सिर्फ निराकार नहीं है, निराकार सो साकार भी है। तो हे बाबा करके हमको पावन बनाओ, क्योंकि पावन बनाने के लिए संग का रंग चाहिए। बाबा आएगा तो बाबा अपने साथ प्रैक्टिकल में अपना वाइब्रेशन लाएगा या नहीं लाएगा? मिसाल है नेहरू जी का। नेहरू जी जब भाषण देने के लिए सामने आते थे तो कोई सुनने वाले भाषणों में से ऐसे ऐसे सुनने वाले होते थे जो पीछे से बहुत बुराइयां करते थे गांधी जी की और नेहरू जी की, और जब सामने आते थे तो पलट जाते थे। ये क्या बात है? विवेकानंद अमेरिका में गए, उन्होंने वाइब्रेशन की बात बताई, दिखाई दी, लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा देखो मैं अभी बताता हूं, आधा घंटे तक अच्छे से अच्छा भाषण दिया जोर से, और आधा घंटे के बाद वो अचानक वहां से भाग खड़े हुए और सारी पब्लिक पीछे पीछे उनके पीछे भाग खड़ी हुई। ये क्या हुआ है? ये वाइब्रेशन की पावर है, ये वाइब्रेशन की पावर जिससे राधा कृष्ण जैसे 16 करोड़ संपूर्ण बच्चों का जन्म होता है, वो 500-700 करोड़ पत्तों में से एक भी पत्ता नहीं है जिसमें ये वाइब्रेशन की 100% पावर आई हो, जिस पावर से राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। वाइब्रेशन से कैसे जन्म होगा? पूछते भी हैं लोग, हम पवित्र रहेंगे तो वहां नई दुनिया में बच्चों का जन्म कैसे होगा? अरे पपीते का मिसाल है, 2 किलोमीटर दूर मादा या मेल वृक्ष खड़ा होता है, बीच में कोई वृक्ष नहीं होता, तो भी उतनी दूर से वो पराग खींच लेता है और फल पैदा करता है, तो क्या मनुष्य नहीं कर सकता? तो देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते थे, श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते थे और सुखी सृष्टि का निर्माण करते थे, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण ही नहीं करते थे। ये भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना विदेशी विधर्मी धर्म पिताओं ने सिखाया, तब से दुनिया में भ्रष्ट आचरण हुआ। तो बाप कहते थे ब्रह्मा के मुख से क्या, किसको बुलाओ है? पतित पावन बाप को बुलाओ, हे बाबा आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। वो भी धर्मी आप हैं तो जन्म जन्मांतर निराकार को मानती रही, और उनमें से श्रेष्ठ आत्माएं खींच करके ब्राह्मण भी बनती है, लेकिन वो निराकार सो साकार को पहचानने वाली नहीं है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण। तुम उसको पहचानते हो, पहचानते हो, बुलाते हो। जो बुलाते हैं क्या कह के बुलाते हैं? पतित पावन सीताराम। जो बुलाते नहीं वो पतित से पावन बनते ही नहीं। बाबा राय देते रहते हैं, क्या कौन राय देते रहते हैं? हैं? बाबा राय देते हैं कि आत्माओं का बाप राय देते रहते हैं, आत्माओं का बाप युक्ति तो देते हैं, क्या कि अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझकर नहीं, अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझकर निराकारी स्टेज धारण करो। क्या करो? आत्मिक स्टेज धारण करो। जब अपन को सूक्ष्म बिंदु के रूप में स्थिर करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी, और परमपिता के जो सूक्ष्म ज्ञान है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गीता में बोला, बाबा भी बोलते हैं मैं गुह्यते गुह्य राज की बातें बताता हूं, तो क्या देवान में रहने से समझ लेंगे? हैं? बाप तो कहते हैं आत्मिक स्थिति को धारण करके एक मुरली को 6 बार पढ़ना चाहिए, मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी। इसलिए बोला कि बाबा राय देते हैं पतित से पावन बनने की, क्या युक्ति बताते हैं ज्ञान की शिव बाप, और पतित से पावन बनने की राय कौन देता है, बाबा या बाप है? बाप राय देते हैं पति से पावन बनने की, बाबा राय देते हैं। जो साकार निराकार का मेल है, बाबा वो राय देते हैं कि ऐसे पावन बनो। कैसे पावन बनो? जैसे पावन देवताएं विधर्मियों विदेशियों के धर्म पिताओं के संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। हा? कैसे पतित बने? अनेकों के संग के रंग में आए, विविचारी संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। पतितों के संग के रंग में आए, कम कलाओं वालों के संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। कलाओं में बंधे हुए देवताओं के संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। तो क्या करो? जो कलातीत है, क्या जो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, क्या खुद बना होगा तो दूसरों को बनाएगा? हा? खुद नहीं बना होगा तो दूसरों को बनाएगा? अरे इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, खुद ही डॉक्टर ही नहीं पढ़ी, प्रैक्टिस ही नहीं की, खुद ही इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस ही नहीं पढ़ी तो कैसे बनाएगा? बनाएगा तो बोला कि बाप नहीं कहते हैं, बाबा कहते हैं, राय देते हैं कि ऐसे पावन बनो। ये पावन बनने की राय देना और किसी को 76 से पहले आया ही नहीं। क्या बल इस्लामियों की बुद्धि में आया, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले थे, जिन्होंने सुना मुरली में, क्या क्या दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन ये बुद्धि में नहीं आया कि किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, है? ऊंचते ऊंच की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है या नीचों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? उन्होंने अपन को ऊंच समझ लिया और दृष्टि देने की परंपरा शुरू कर दी, पोस्टर छपा दिए शिवज्योति बिंदु ऊपर, उसके नीचे कुमारका दादी का चित्र, उसके नीचे जानकी दादी का चित्र विष्णु जी महाराज, उसके नीचे गुलजार दादी का चित्र, चेहरा ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो हो गया महादेव। वो महादेव में शिव बाप प्रवेश करते हैं, उसको देवों में बड़ा देव महादेव बनाते हैं, फिर वो दूसरों को देवता बनाता है। वाह भाई वाह, हो गई शुरुआत। किस बात की? शिवो अहम, आत्मा सो परमा, हर आत्मा परमात्मा बनना शुरू हो गए। जो देहधारी गुरु गद्दी पे बैठा क्या बन गया? परमात्मा बन गया। लेकिन बाप कहते हैं, बाबा तुम बच्चों को राय देते हैं, क्या कि ऐसे पावन बनो। कैसे पावन बनो? है अरे देवताएं कैसे पतित बने? है जो विधर्मी विदेशी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आए और उनके संघ के रंग से पतित बन गए, ऐसे तुम भी क्या करो, तुम उल्टा कर दो, अनेकों के संघ के रंग में मत आओ। क्या अनेकों से कानों से ज्ञान न सुनो, अनेकों से दृष्टि मत लो। क्या दृष्टि जो है साकार में भी विनाशी आंखों से ली जाती है, और माता बच्चा विदेश में चला जाता है पढ़ाई पढ़ने के लिए 4-6 साल, उसे अंदर की आंख से याद करती है कि नहीं, तो संग का रंग लगता है कि नहीं। तो ऐसे ही एक का संग का रंग करो, अनेकों का संग का रंग नहीं लेना है, ऐसे तुम पावन बनेंगे। और संग का रंग शरीर के बिना तो लगता ही नहीं, शरीर की इंद्रियां चाहिए। मिसाल दिया जाता है, स्त्री अपने जीवन में सारा जीवन पति की पुरुष इंद्रियों को याद करती है, तो अंत समय भी क्या याद आता है, अंत मते सोगते हो जाती है। स्त्री को पुरुष का जन्म लेना पड़ता है, ये है संग कारण बलिहारी। ऐसे ही पुरुष सारा जीवन जिस स्त्री का संग का रंग करता है, इंद्रियों से सुख लेता है, वो सुख अंत समय में याद आता है, अंत मते सो गति स्त्री का जन्म मिल जाता है। कि इतना बड़ा मिसाल मौजूद है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रैक्टिकल में संग का रंग लिए बगैर पति से पावन नहीं बन सकते और पावन से पति भी नहीं बन सकते। तो बाप जो युक्ति बताते हैं, राय बताते हैं, बाप नहीं बाबा, वो याद करते करते तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। क्या क्या याद करते करते, हे पतित पावन आओ। कौन पतित पावन आओ, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आओ, दादा देखराज ब्रह्मा आओ, कौन आओ है, शिव बाबा आओ, शिव बिंदी का नाम है, जिनके यादगार मंदिर बने हुए हैं, जो अपने पुरुषार्थ से साकारी से निराकारी बिंदी सदाकाल के लिए संगम में बन जाता है। क्या साकारी से क्या बन जाता है, निराकारी बन जाता है। वो शिव बाबा की बात है, शिवलिंग की बात है, उस निराकारी बिंदु सुप्रीम सोल की बात नहीं है, जो कहता है कि न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। माना मंदिर में जो शिवलिंग पूज्य है, सारी दुनिया में मंदिर मिले हैं यादगार, मूर्तियां मिली हैं लिंगाकार, वो सार्वभौम पूजा किस आत्मा की होती है, वो सुप्रीम सोल तो कहता है ब्रह्मा द्वारा, न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो जो शिवलिंग है, जो पूज्य है, पूजने योग्य है, जिसकी सारी दुनिया पूजा करती है, वो किसकी यादगार है, है? हाँ, उस साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है, जो पुरुषार्थ करके बाप समान टाइटल धारण कर लेता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी 500-700 करोड़ मनुष्य में से किसी का नाम शिव के साथ, कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता, चाहे वो त्रिमूर्ति ही क्यों न हो, क्योंकि जो ऊंची से ऊंची मूर्ति शंकर है वो भी याद में बैठा हुआ है। पुरुषार्थ कर रहा है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया, तो अधूरा है या संपूर्ण हो गया, अधूरा है। उसको भी इंद्रियां दिखाई जाती हैं, नाक आंख कान मुंह हाथ पांव, उसकी पूजा नहीं होती है मंदिर में। हाथ पांव नाक आंख कान वाली मूर्ति की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है, है? उसकी पूजा होती है जो अपन को शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाई लेता है। कर्मातीत तो बना लेता है, कर्म इंद्रियों से कर्म करता है और सामान्य कर्म इंद्रियों से नहीं, उस कर्म इंद्रिय से कर्म करता है जिस कर्म इंद्रिय के लिए गायन है। काम जीते जगत जीते, इंद्रिय जीते क्या, आंख जीते जगत जीते, आंख भी तो इंद्रिय है नहीं। जिस इंद्रिय को जीतना कोई भी मनुष्य मात्र के बस की बात नहीं है, उस इंद्रिय को जीते जगत जी। इसलिए शास्त्र में दिखाया है कि किसने कामदेव को भस्म किया। कामदेव कोई अलग से देवता नहीं था, है वो जो देवता कहा गया 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में हीरो पाइलटधारी ऊंचते ऊंचे है, वो महादेव वाली आत्मा अपने अंदर के कामदेव को भस्म कर देती है, कर्मातीत अवस्था हो जाती है। कर्म भल करता है कर्म इंद्रियों से, सन्यासी नहीं है कि कर्म इंद्रियों से कर्म करना छोड़ दे, संग करना छोड़ दे, नहीं, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करता है परंतु कर्मातीत स्टेज में काम करता है, कर्म इंद्रियों का फल प्राप्त नहीं करता। और कर्मातीत अवस्था जब तुम्हारी बन जाएगी तो तुमको सही स्थिति में सदा रहने का वर्षा स्वर्ग मिल जाएगा। कब मिलेगा, कब मिलेगा, है? हाँ, ऐसी स्थिति को धारण कर लो कि कोई भी परीक्षा आ जाए, विकट से विकट, फिर भी आत्म की स्थिति को नहीं छोड़ना। कर्मेंद्रियों के लगाव में नहीं आ जाना, कर्मेंद्रियों से चंचल नहीं हो जाना। पीछे चलो, क्या कर्मातीत हो जाना, लेकिन थोड़ा पीछे चलो, पीछे जाकर के थोड़ा ठहरना। कहाँ? हाँ, जीवन मुक्ति में जाने से पहले जीवन रहते होते देह में आत्मा रहते रहते कर्म इंद्रियों से कर्म करते करते ज्ञान इंद्रियों से कर्म करते करते आत्मिक स्थिति में ऐसे ठहर जाओ पहले कि घर में नंबर वार ठहरने योग्य बन जाओ। क्या? हाँ, जब यहाँ सात सुख शांति हो जाएगी। क्या कहा? जब यहाँ, यहाँ माने कहा? इस नीचे की दुनिया में, साकार दुनिया में सात प्रकार की सुख शांति हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में जो विनाश होता है वो सबसे बड़ा विनाश प्रकृति से होता है। कैसे होता है? प्रकृति, प्रकृति पति कहा जाता है ना, है? तो प्रकृति पति का विनाश होता है, या जरी खसम की लड़कन मारे, प्रकृति पति के बच्चों का विनाश होता है शरीर से। किसका विनाश होता है? 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 सारी सृष्टि का जब विनाश होगा तो एक बचेगा या नहीं बचेगा? साकार सो निराकार, जिसके लिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना, ऐसी मूर्ति, मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार, ऐसी मूर्ति जो अव्यक्त भी है, इन आंखों से देखने योग्य नहीं है। अव्यक्त का मतलब वो मूर्ति, उसके हाथ पांव नाक आंख कान दिखाई नहीं देते, भले इस आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन है तो साकार ना है। कर्मेंद्रियां कट जाती हैं क्या? रहती है ना, ऐसे तो नहीं ये कट गई खलास, नहीं, कर्मेंद्रियों से कर्म करता है फिर भी निराकारी है। माने वो इंद्रियां इन आंखों से देखने में उस मूर्ति में दिखाई नहीं देती। तो ऐसी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, उससे पहले थोड़ा आत्मिक स्थिति में ठहरना, घर में जाना। कौन सा घर? तुम आत्माओं का घर, आत्मलोक। जब यहाँ सब सुख शांति हो जाएगी, कहाँ? यहाँ। टाइम तो लगेगा है? नहीं लगेगा? टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा है? क्योंकि जब आएंगे तो शरीर में ही तो आएंगे। आत्मलोक से आएंगे तो नई दुनिया में आएंगे, तो शरीर में आएंगे ना, कि शिव बाप की तरह आएंगे, उसको भी तो शरीर चाहिए है? तो जब आएंगे तो पांच तत्वों का पुतला चाहिए या नहीं चाहिए? आत्मा तो ऑलरेडी है ही, ऊपर से आई, उसका विनाश तो होता नहीं, लेकिन पांच तत्वों के पुतलों का तो विनाश 500-700 करोड़ का हो गया ना है? तो वो पुतले कहां से आएंगे है? हाँ, जब यहाँ सब सुख शांति हो जाएगी, वो पांच तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जिनसे तुम्हारा ये शरीर बनता है, सतो प्रधान या तमो प्रधान, वो पांच तत्व सात्विक बन जाएं। जब वो पांच तत्व तामसी बनते हैं तो उनमें मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी शबकी अम्मा जगदम्बा पृथ्वी आती चौड़ी होती जाती है, कन्या होती है तो पतली होती है, माता बनती है तो चौड़ी होती जाती है, तो सबसे बड़ी माता कौन? सारे जगत की अम्मा। उसको मिसाल दिया है, भगवान का अवतार बताया है। क्या है? मत्स्य अवतार दिखाते हैं। पहले चुल्लू में लिया, छोटी मछली थी, फिर बड़ी हो गई तो पात्र में डाल दिया, और बड़ी हो गई फिर बड़े घड़े में डाल दिया, घड़े में भी नहीं समाई, वहां से निकाला, घर में ही एक छोटा तालाब जैसे बना देते हैं, हौदी में डाल दिया और बड़ी हो गई। तो गांव के पास तालाब होते हैं, उन तालाब में डाल दिया और बड़ी हो गई, नदी में डाल दिया, नदी भी भर गई, पानी रुकने लगा नदी का, तो नदी में से निकाल के सागर में डाल, इतनी चौड़ी होती जाती है। क्या कैसे हो जाती है चौड़ी इतनी? है नहीं, देवान से चौड़ी होती जाती है, इतना देवान में चौड़ी होती है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े देह अभिमानी हैं, सबको खलास कर देती है, सबके ऊपर राज करेगा खालसा। क्या करेगा? राज करेगा खालसा। 500-700 करोड़ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ऊपर कौन राज्य करेगा? है जो पवित्र रहने वाली आत्मा है वो राज्य करेगी, शरीर से नहीं पवित्र। शरीर से पवित्र रहते हैं तो गोरे मुंह वाले कहे जाते हैं। क्या? शरीर से भला पवित्र, लेकिन मन बुद्धि से क्या पवित्र। इसलिए जगदम्बा को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? महाकाली के रूप में चंद्रमा तो दिखाते ही हैं, तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, शिव नेत्र। क्या? देह से बल पतित होती है, कर्म इंद्रियों से प्रबल पुरुष स्त्री चोले को कंट्रोल भल कर लें, फिर भी मुर्दा हो जाए, मन बुद्धि से ऊपर उड़ जाए, कर्म इंद्रियों में कोई चंचलता ना आने पाए, कोई दुर्योधन दुशासन कर्म इंद्रियों को कंट्रोल न कर सके, चंचल न बना सके संग के रंग से, ऐसी स्टेज धारण करने वाली जगदम्बा कही जाती है। वो जगदम्बा पांच तत्वों का संघात है, पृथ्वी तो है ही मिट्टी। क्या सीता कहां से जन्म लेती है? है मिट्टी से जन्म लेती है, पृथ्वी से जन्म लेती है, और पृथ्वी में ही समा जाती है, उसकी यादगार है। तो बताया ये पांच तत्वों का संघात जिस पृथ्वी में है, पानी भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी के अंदर वैज्ञानिक बताते हैं इतनी गर्मी है कि सारे तत्व पिघल करके लावा बन जाते हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर से वो गर्मी गरम गरम लावा इतनी तेजी से निकल करके चारों ओर फैल जाता है कि एकदम जैसे लोहा पिघल करके बहने लगता है, इतनी गर्मी भरी हुई। तो अग्नि भी है कि नहीं? जल भी है, अग्नि भी है, हवा भी है और वैक्यूम भी है, आकाश। तो ऐसी पृथ्वी माता इतना भयंकर रूप धारण करती है कि दुनिया में बड़े बड़े भूकंप लाती है। उन भूकंपों से दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो आज के युग में ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में 100-100, 200-200 मार के मकानों में रहती है, रहती है कि नहीं है? सब धराशायी हो जाते हैं। अनेक मंजिलों के मार धराशायी नहीं होते हैं, एक मंजिल के मकान भी सात धराशायी हो जाते हैं। कितने मत होंगे? इसलिए मुरली में बोला सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। तो बताया जब यहां सात सुख शांति हो जाएगी, आत्माएं तो शरीर छोड़ करके चली गई परमधाम, आत्माओं के घर में, आत्माओं के बाप के घर, वो कब आनी चाहिए? अरे पांच तत्व सतो प्रधान बने तब आनी चाहिए या पहले ही आ जानी चाहिए? तो पांच तत्वों में जो मुख्य तत्व है पृथ्वी, जगदम्बा, वो सात्विक बने। क्या बने? सात्विक बने। जो पृथ्वी है जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, पांचों ही तत्व जड़त्वमयी है या चैतन्य बुद्धि है? है जड़त्वमयी बुद्धि है। जो चैतन्य आत्मा जगदम्बा है वो भी जड़त्वमयी बुद्धि है। बाप ने बोला इतने लंबे समय तक बाप का साथ निभाने वाला वो रुद्रमाला का मणका जो जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, इतना संग का रंग लिया साकार शरीर से, साकार कर्मेंद्रियों से, जितना संग का रंग कोई भी मनुष्य मात्र नहीं ले सकता। पुरुषों की तो बात छोड़ो, कोई कन्या माता भी इतना संग का रंग नहीं ले सकती। ऐसे लंबे समय तक संग का रंग लेने वाली ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि है कि बाप को भूल जाती है, तामसी बन जाती है औरों के संग से। क्या 500 करोड़ जो भी विधर्मी हैं उनके संग के रंग से तामसी बन जाती है? उस माता को दुनिया की सब माताएं आज तक फॉलो कर रही। जितने ज्यादा बच्चे पैदा करती है उतनी ज्यादा चौड़ी होती जाती है, बुद्धि क्षीण होती जाती है, आत्मा रूपी बुद्धि, और शरीर क्या चौड़ा होता जाता है, देहभान बढ़ जाता है और आत्माभिमान घट जाता है। बच्चों में सारी बुद्धि चली जाती है, आत्मा की शक्ति निचुड़ जाती है, तामसी बन जाती है। तो देखो कलयुग के अंत में जब तक भगवान न आए तब तक उस धरती माता का उद्धार कौन करेगा? और उसके पीछे चलने वाली जो माताएं हैं, उन माताओं का उद्धार कौन करेगा? इसलिए बोला कि भगवान बाप जब आते हैं तो जिन कन्याओं माताओं को दुनिया वाले ठुकराते हैं, नीचे गिराते हैं, उन्हीं कन्याओं माताओं को बाप स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बनाते हैं। और बादशाही देते हैं, राज्य करो। अकेली जगदम्बा राज्य करती है कि ढेर भुजाएं भी दिखाते हैं, सहयोगी भुजाएं भी दिखाते हैं, अनगिनत भुजाएं। वो कन्याएं माताएं जो ब्राह्मणी बनती हैं, बेसिक नॉलेज में भी ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करती हैं कि नहीं, और एडवांस नॉलेज की दुनिया में भी कंट्रोल कर रही हैं या नहीं, और अंत तक भी, जब तक दुनिया का टोटल विनाश न हो तब तक क्या करती रहेंगी? कंट्रोल करती रहेंगी। इसलिए गायन है खास करके सिखों में, क्या राज करेगा? खालसा। बोला जब यहां सब सुख शांति हो जाएगी, माना सब माने क्या, पांच तत्व भी सात, खलास, खलास तो हो गए पहले, खलास हो गए तो आत्माएं आत्मिक स्थिति में परमधाम चली गई, घर में चली गई, बाप के पास चली गई, बाप की गोद में चली गई, शांति में चली गई। इसलिए बोला क्या याद करो? बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे तीन तीन को क्यों याद करें? तीन तीन को क्यों बताया? एक शिव बाबा दूसरा ना कोई कि तीन तीन है? फिर कारण क्या? तीन क्यों बताया? क्योंकि जो साकार बाप है, जिसमें निराकार प्रवेश करता है, वो हमारा घर भी है, जो सृष्टि रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। जिस साकार की याद में सारी दुनिया उसमें समाये रही है, जो बोलता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन बोलता है? ऊपर वाला आत्माओं का बाप। उसको मन होता है? साकार बाप को मन होता है, वो बोलता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। मन कहो, दिल कहो, उस बाप का दिल कौन है? अरे कोई भी दुनिया के बाप का, जितने बड़े बड़े राजाएं बाप बने, उनका दिल परिवार में किसके ऊपर गया? बड़े बच्चे के ऊपर गया। तो ये भी दिल वाला बाप है, जिसको बाबा नाम दिया, उसे शिव बाबा का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सतयुग में पहला पत्ता बड़ा बच्चा बनता है सृष्टि का। कौन? ब्रह्मा। जिसके लिए बोला कि बाप अकेला जन्म नहीं लेता, क्या बच्चे के साथ बाप की प्रत्यक्षता होती है। जब बाप प्रत्यक्ष होता तो कृष्ण बच्चा भी प्रत्यक्ष होगा। सारी पढ़ाई किसके लिए हो रही है? कृष्ण बच्चे के लिए हो रही है। तो सारी सृष्टि का विनाश होता है तो जो कृष्ण बच्चा है पहला पत्ता, जो ब्रह्मा कहा जाता है, बड़ी अम्मा, और उसके साथ बड़ा बाप जगत पिता जगदम्बा, वो आत्मा पहले पहले बाप की बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश कर जाती है, उसकी याद में मनमना भव हो जाती है। किसने बोला मनमना भव? कौन सी आत्मा ने बोला? हाँ, साकार बाप मनुष्य सृष्टि का जो है वो बोलता है, मेरे मन रूपी घोड़ा कहो बैल कहो उसके गुणों में सब आ जा। उसमें मुख्य गुण कौन सा था? सहन शक्ति। सहन शक्ति सब गुणों का राजा। उसकी गोद में समा जा, माना उस समान सहन शक्ति को धारण कर ले, समा जा। और बाप भी कहते हैं, तुम बच्चे कितना भी देह अभिमान दिखाओ लेकिन अंत में मैं तुम बच्चों को मच्छरों से सदृश ले जाऊंगा। मच्छरों को देह होती है, है? भारी भरकम नहीं, कोई देह अभिमान नहीं रहेगा, कम से कम बिल्कुल अंत में धर्मराज मार मार के सारे देवान को, सारे देवान के छिलके को उतार देगा, तब ले जाऊंगा। तो बोला पहले घर में जाएंगे या सुखदान में जाएंगे? है, और घर कौन सा है तुम्हारा? परमधाम कौन सा है? सृष्टि पर है साकार सो निराकार, जो सृष्टि रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। सभी आत्माएं 500-700 करोड़ दुनिया की भगदड़ के बीच, अशांति के बीच, विनाश काल के टाइम पर देवान में होंगी या आत्माभिमान में होंगी? आत्माभिमान में होंगी। बाप कहते हैं अंत में तुम बच्चों को ऐसी दृष्टि दूंगा कि जो तुम देह में ठहर नहीं सकेंगे। तो बच्चे अपने पुरुषार्थ से ठहरेंगे या बाप उनको दृष्टि का संग सृष्टि दृष्टि से संग लगाकर तुम्हारी सृष्टि को सुधारेगा? बाप सुधारेगा, इसलिए सृष्टि वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ जो बच्चों को बोलता है, क्या बोलता है? है, है? बच्चों को बोलता है, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, लेकिन तुम बच्चों को, उन बच्चों को नहीं, दुनिया वाले विधर्मियों को या विधर्म में कन्वर्ट होने वाले बच्चों को, इनको नहीं, इनको माने ब्रह्मा को नहीं, जो ब्रह्मा के असल चंद्रवंशी बच्चे हैं। कौन? जो चंद्रवंशी से कन्वर्ट होकर सूर्यवंशी बन जाते हैं। क्या? इनको भी नहीं। क्या? तुम बच्चों को ले जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे साथ ही रहता है। कौन? ब्रह्मा। क्या नाम देते हैं हम लोग उसे? बाप दादा, माता पिता। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। एक ही शख्सियत है, एक ही पर्सनालिटी है या दो हैं? एक ही है। जो एक है उसका गायन है बाप दादा, उसका दायित्व है माता पिता, तो वो तो साथ ही साथ। जब सृष्टि का विनाश होगा तो कौन सी आत्मा पहले पहले बाप के बुद्ध रूप में निवास करेगी? ब्रह्मा की आत्मा निवास करेगी। सभी बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं लौकिक दुनिया में भी, किससे पैदा होते हैं? बाप से पैदा होते हैं। बच्चे किससे पैदा होते हैं? माँ से नहीं पैदा होते। अरे दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है माँ से बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि देखे जाते हैं आंखों से। दुनिया देह को महत्व देती है, लेकिन हम बच्चे देह की आंखों को महत्व देते हैं या तीसरे नेत्र बुद्धि को महत्व देते हैं? हम जानते हैं कि माता से पहले पहले बच्चा नहीं आता है। पहले पहले बच्चा की जो आत्मा है कहां से आती है? है बाप से आती है। देह अभिमानी बाप देह को पहले निर्माण करता है या आत्मा को निर्माण करता है? तो माँ के पेट में पहले देह का पिंड तैयार होता है, हाथ पांव वाला। उसका बीज है बाप के पेट में, क्या जिसे बीज कहा जाता है। वो बीज माँ के पेट में आता है, उस बीज से भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण जब बड़ा होता है, हाथ पांव वाला होता है, तब उसमें आत्मा 4-5 महीने के बाद प्रवेश करती है। फिर 4-5 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसे ही है, जब सच्ची का निर्माण होता है, पहले पत्ते का जन्म होता है, तो पहले पत्ते की आत्मा किसमें जाती है? है? अरे बाप में जाती है। बाप के बुद्धि रूपी पेट में पहले वो जाती है, फिर नंबरवार 500 करोड़ बच्चे जाते हैं। किसकी याद में जाते हैं? कौन कहता है मनमना भव? वो या ये है? कौन कहता है? साकार बाप कहता है। तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को विनाश के काल में जब बड़ी भारी अशांति हो जाती है दुनिया में, तो वो आत्मिक स्थिति में टिकेंगी या देवान में भगदड़ में आ जाएंगी? है आत्मिक स्थिति में टिकेंगी। वो अपने आप आत्मिक स्थिति में नहीं टिकती, बाप उनको खींचता है। तो वो सभी आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, मन मना भव होकर बाप में समा जाती है, बुद्ध रूपी पेट में। इसलिए गीता में भी लिखा है, उस बीज से ही वृक्ष निकलता है, निकलता है ना? और उस वृक्ष में जो बीज पहले पहले अपने को वृक्ष से डिटैच कर देता है, फल पकता है, उसमें बीज होता है। जब पूरा पक जाता है तो बीज फल से अलग हो जाता है कि नहीं? वृक्ष से अलग हो गया ना, डिटैच हो गया ना, ऐसे ये मनुष्य सृष्टि का बीज है। जो पहले पहले नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनता है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप उन बीज रूप आत्माओं को, जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है, उन बीजों को पहले पहले ऐसी तीखी दृष्टि देता है, ऐसा प्यार देता है कि कहा जाता है नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, नहीं तो नैन तो इतने छोटे, बच्चे तो देहधारी दुम्ब इतना बड़ा, कैसे ले जाएंगे। ये आत्मा को खींचने की बात है, मन बुद्धि को आकर्षित करने की बात है। तो बोला जब इस सृष्टि पर सब सुख शांति हो जाएगी और तुम बच्चे घर में पहुंच जाएंगे परमधाम आत्मलोक में, आत्माओं के बाप के घर, और इस यहां सृष्टि पर सब सुख शांति हो जाएगी, ये सब क्लियर हो जाएगा कि चला क्या पांच तत्वों का तमो प्रधान किचरा सब क्लियर हो जाएगा तब क्या थोड़ा भी किचड़ा रह जाए उस सृष्टि में नहीं आना, आकर के राज्य करना है, आकर के राज्य करना। कैसे? यथा राजा तथा प्रजा। पारिवारिक व्यवस्था होती है तब बच्चा कहता है, उसे पूछा जाए ये दुकान किसकी, ये मकान किसका, ये कारखाना किसका, तो बच्चा किसका बताएगा, मेरे बाप का, क्या बताएगा, मेरा है। तो ऐसी पारिवारिक व्यवस्था पक्की 100% बनती है कि जो राजा होता है वो प्रजा को अपने बच्चों की तरह देखता है। प्र माने प्रकृष्ठ रूपेण, जा माने जन्म देता है। ऐसे सात्विक बच्चे राजा के बच्चे का अनुभव करते हैं राज्य करना। इसमें समझने में क्या बड़ी बात है, है? अरे दुनिया का विनाश होगा तुरंत राज्य करने चले जाएंगे नई दुनिया में, तुरंत नई दुनिया बन जाएगी नहीं। इसलिए बोला पीछे वाणी में बता दिया, क्या बता दिया, स्वर्ग और नरक कहा जाता है, ये संगम युग का टाइम देते हैं, ये भी हो जाएगा। बाबा समझते हैं, ब्रह्मा बाबा समझते हैं, कम से कम 100 वर्ष तो देना चाहिए इसको भी। संगम को कितना टाइम दिया ब्रह्मा के मुख से, 100 वर्ष। पुरुषोत्तम युग, ये युग को कम से कम 100 वर्ष, 100 वर्ष तो देना चाहिए ना। जो ये कचरपट्टी साफ साफ हो करके, कचरपट्टी सब साफ हो जाए, वो जो रुद्रमाला के बच्चे बचते हैं उनमें भी जो दो बचते हैं, कौन है, हाँ दोनों बचते हैं, उनमें से भी, उन दो में से भी जो वो है, इशारा किया क्षेत्र की तरफ, जो वो है वो रहेगा एक बीज, और बाकी सब चले जाएं, क्लियर हो जावे सभी, फिर उनको कहेंगे नई दुनिया में सब गए। तो बोला कम से कम 100 वर्ष देना चाहिए, दुनिया को खलास होने में। पहले बोलो वो बात रही, 40 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष लगे, हमारा तो उससे भी कोई कनेक्शन नहीं है। विनाश से हमारा कनेक्शन काय से है? हमारी कनेक्शन है जीवन मुक्ति से। हम क्या वर्षा चाहते हैं? है जीवन मुक्ति का। तो वो जीवन मुक्ति की दुनिया जहाँ हमारा जीवन भी हो, पांच तत्वों का शरीर भी हो और जीवन में हमें सुख मिले दुख नहीं मिले, वो 100 वर्ष के बाद हो जाएगा कि टाइम लगेगा? है वो टाइम लगेगा। तो ये कहें कि संगम युग 100 वर्ष से भी ज्यादा है तुम्हारे लिए, 100 वर्ष तुम बच्चे कब से जन्म लिया, कब से समझा हम सूर्यवंशी हैं? 76 से, तो 76 से 100 साल जोड़ो है? कब तक हुआ? 2076 कम से कम, 36 से लेकर 46, 56, 66, 76 कितने साल हुए है? हाँ, ये 40 साल और लगेंगे तुमको जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए। कौन से बाप से लेंगे? निराकार बाप वहां होगा जो जीवन मुक्ति का तुम्हें वर्षा दे? कौन होगा? वो साकार बाप होगा जिसने 100% उस निराकारी बाप को पहचाना, औरों ने नहीं पहचाना। जानना पहचानना एक ही बात, जान लिया माने ज्ञान लिया। जो जितना बाप को जानता पहचानता है, बाप का ज्ञानी बनता है पहचान का, वो उतना बड़ा वर्षा लेता है। क्या? इसलिए पढ़ाई में मुख्य सब्जेक्ट कौन सा? पहले ज्ञान, बाद में योग। और ज्ञान का वर्षा कौन देता है? कौन? ज्ञान निराकार, तो वर्षा देने वाला भी निराकार। और योग माने ताकत, शक्ति। वो योग की ताकत कौन देता है? अरे योग लगाने वाला होगा, योगी होगा, कोई से योग लगाएगा तब तो योगी बनेगा है? योगी है ना, योग लगाता है ना। खुद योगी नहीं होगा तो दूसरों को योग शक्ति का वर्षा देगा। योग ही शक्ति है जिससे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता कहा जाता है। क्या? 8 सिद्धियां मिलती हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कपिल मुनि को सांख्य शास्त्र का प्रणेता बताया। सांख्य का मतलब सा माने सह, साथ। आख्य माने व्याख्या, जो व्याख्या के सहित ईश्वरीय ज्ञान को सुनाता है वो सांख्य शास्त्र का प्रणेता। कौन सा मुनि गाया गया? कपिल मुनि। उसकी बसाई गई नगरी का नाम कामपिल्ले नगर पड़ा। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, रचना के अर्थ। तो वो सांख्य शास्त्र का प्रणेता योगी है। 8 प्रकार की सिद्धियों का प्राप्त करके बच्चों को देने वाला है। नंबर बात तो बताया कि ज्ञान का वर्षा किससे मिलता है? है निराकार ज्ञान तो निराकार बाप, ज्ञान का दाता, वर्षे का दाता। कैसा वर्षा देता? निराकारी वर्षा देता। और साकारी वर्षा योग। साकारी वर्षा क्या है? है याद, किसकी याद? है एक की याद या दो की याद? है साकार में निराकार को पहचानता है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन है साकार सो निराकार, पहचानता है कि नहीं? और पहचान करके उसी स्वरूप को उसी स्वरूप में याद करता है। तो योगी कौन हुआ? वो या वो है? वो कह जाएगा योगी, योग लगाने वाला। वो योग लगाता है, है? किसी साकार सो निराकार को याद करता है? है नहीं, उसे याद करने की क्या दरकार? वो कभी पतित बनता है? बनता है नहीं, पतित ही नहीं बनता। उसको कोई पावन बनाने वाला है क्या जिसको याद करे? उससे ऊंचा कोई और आत्मा है क्या तो किसको याद करेगा? इसलिए वो जिसमें प्रवेश करता है वो योगियों का ईश्वर है, योगेश्वर सनत कुमार कहा जाता है। भक्तों ने शंकर को भी योगेश्वर कहा है। वास्तव में जो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र है, जो ज्ञान में बड़ा हुआ, प्रैक्टिकल ब्रह्मा दादा लेखराज है ना, उसका बड़ा बच्चा कौन हुआ? ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को सबसे जास्ती किसने धारण किया है? शंकर के लिए गाय ने। वो बड़ा बच्चा है, कहते भी हैं क्या त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और आगे शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? मुरली में ही क्लियर कर दिया, शिव का बड़ा बच्चा महादेव। तो वो बड़ा बच्चा विश्व का बादशाह बनता है। कौन सी प्रॉपर्टी के आधार पर? ज्ञान की प्रॉपर्टी के आधार पर, त्रिनेत्री होने की प्रॉपर्टी के आधार पर, योग लगाने के आधार पर। तो जो बाप कमाता है वो ही बाप बच्चों को वर्षा दे सकता है। कमाएगा नहीं, अर्जन नहीं करेगा। अर्जुन कहा ही जाता है जो सद्भाग्य का अर्जन करता है उसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तो जो दुनिया में सबसे भाग्यशाली रथ है वो भाग्य किससे लेता है? है उसको भाग्य का वर्षा देने वाला कौन? शिव बाप ब्रह्मा द्वारा देता है। इसलिए भाग्य विधाता ब्रह्मा को कहते हैं। किसको कहते? ब्रह्मा भाग्य विधाता। इसलिए बताया कि हमारे पास जो कुछ उनका जमा होता है हम उसकी बताई हुई युक्ति को राय को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं, तो हम उसका जमा कैसे करेंगे? ये भी खिर नहीं है बहुतों में, अकल ही नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, बाकी वो बुद्धि में, वो युक्ति नहीं है पतित से पावन बनने की, जो भक्ति मार्ग में भी बुलाते रहे बिना जाने, और अब ज्ञान मार्ग में जान करके बुलाते हैं, तो भी बुद्धि से वो पहचान लेकर के नहीं बुलाते पूरी कि आओ। और जो इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है कौन से? आंख। उसके संग के रंग से हमको क्या बनाओ? पतित से पावन बनाओ। जानते ही नहीं तो हम जमा कैसे करेंगे? बहुतों में ये खैर नहीं है, ज्ञान तो बहुत है, बाकी वो युक्ति जो बाप बताते हैं संग की रंग की, पतित से पावन बनने की, वो युक्ति बच्चों में नहीं। सामने बैठेंगे झूमते रहेंगे तो बुद्धि में बैठा क्या है? कहेंगे बुद्धि में बैठा? नहीं बैठा, धंधे दोरी में बुद्धि लगी हुई है। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा होना चाहिए। हद के धंधों में बुद्धि लग जाती है, जो बेहद के बाप का धंधा है उसमें बुद्धि नहीं लगती, युक्ति ही नहीं है। बस हमने शिव ये हमने खोला सेंटर, ये हमने खोली गीता पाठशाला, ये हमने खोला, हमने खोला नहीं, शिव बाबा कह दो हमने नहीं खोला। किसने खुलवाया है? करण करावनहार कौन है? शिव बाबा। किसने खुलवाया? शिव बाबा ने खुलवाया, नहीं तो बहुत से पैसे वाले हैं, मेलवाणियों वाले हैं, ब्राह्मण बहुत से हैं कि नहीं? सबने खोला? सबने गीता पाठशाला खोली क्या? खोली सबने? सेंटर खोला क्या? नहीं खोला। तुमने इनडायरेक्ट जाकर किसको दिया? पूछा। तुमने खोला तो तुमने इनडायरेक्ट जाकर के किसको दिया है? किसको दिया? जिसको दिया उसने खोला क्या? जिसको दिया उसने खोला, वो थ्रू ब्रह्मा ने नहीं खोला, वो थ्रू ब्रह्मा ने नहीं खोला। तो वो जोर भी नहीं मारते हैं कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा है। कौन जोर मारते हैं बोला? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। उसे परम ब्रह्म को पहचाना क्या है? जिसको सारी दुनिया नमन करती है आखिरी, उसको तो पहचाना ही नहीं। समझा ना? तो नहीं पहचाना तो वो सेंटर से इतना जोर नहीं भरते हैं, तो सेंटर भी खोलना है तो थ्रू ब्रह्मा खोलना है। क्या? किसके थ्रू? ब्रह्मा के थ्रू। परंतु ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, कौन से ब्रह्मा के थ्रू है? नहीं, प्रजापिता भी पतित का नाम है। किसके थ्रू खोलना है? है? हाँ, परम ब्रह्म के नाम, परम ब्रह्म को पहचान करके तब खोलना है। तो ये बात बुद्धि में आ जाए, वो आपे ही युक्ति रचेगा। हाँ बाबा, ये हम देते हैं, ये पाई देते हैं, ये यज्ञ खोलने में आप लगाए देना, हम नहीं लगाए रहे हैं। कौन लगाए देना? आप लगाए देना, बस खलास। तो ये बात भी भूल तो बहुत करते हैं ना, उनको पता ही नहीं पड़ता है कि वो परम ब्रह्म कौन है, जिसको अंत में सारी दुनिया झुकेगी। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का, विश्व धर्मों का, सारे विश्व का पिता पति विश्वनाथ बनने वाला है। ओम शांति।